ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पातरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतदिव संयुतं विविधभक्तमरासमालयं बहुरोरासिकभुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाश्रवयेषु देशु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। एते चंसा कलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृदयान्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। श्रीमद्भागवतं से पढ़ रहा है क्या? क्या हरे कृष्ण प्रभु जी आ रहा है श्लोक और क्या चल रहे वहां? तो पंचम स्कंद अध्याय 26 और एवं श्लोक संख्या 22 और 23 ठीक है। 22 ठीक है। मैं यह है कि बहुत ये श्लोक बहुत लंबा है तो मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक इसके बादों बाद भी और इसके बाद प्रभुपद की तत्पर्य पढ़ लेंगे। इसके बाद दो तीन शब्द बता देंगे इसके बारे में। ये द्विहा वै रजन्या रज पुरुषा वा अपकंड धर्म से तुम बिंदन्ति ते संपरेत्या वैतरण्यम निपतन्ति भीनम आर्यदास्ताभ्यम निरयापरिकाबूतयम नद्यम यदोकानैरितस्ततो भक्षमाना आत्मनाना वियुज्यमानास् चामुभीरुयमानं सदेनम् कर्मपाकं अनुस्मरन्तो विन्मुत्रपुषायो नीतकेशं कस्तिमेतो मां सवसमावाहिं यामुनपतप्यन्ते। अनुवाद। जो मनुष्य ये इस अध्याय में नरकीय लोकों का वर्णन है। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राजा परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है वो मृत्यु के समय वैतरणी नमक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली गाय के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उससे तुरंत खाने लगता है और पापमय शरीर होने के कारण वो अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वो निरंतर अपने पापमय कर्म को स्मरण करता है और मल मूत्र बीब रक्त केश नाक हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यत्नाएं पता है। श्लोक संख्या 23 ये त्विहावै वृषलिप्यताय नष्टशौचाचारानियमत्स अक्ता लजा पशुचार्यं चरन्ति ते चापि प्रेत्या पीयावीना मुद्रा श्लेष्म मलापूर्णनार्णवेन् निपतन्ति तवेवाहिति बी सतमशनन्ति. तात्पर्य ये अनुवाद और तात्पर्य श्री ऐसे वक्ति वेदांत स्वाम शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के निम्न कुल में जन्मी शूद्रा स्त्रियां के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण सुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है. ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नमक नरक में फेंक दिया जाता है, जहां वे मल पीप श्लेष्मा लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाता है. जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाता है वह इस सागर में गिर कर इन ग्रेनिट वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किया जाता है. तत्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कर्म कंद ज्ञान कंद केवल विशारक भंड अमृत बलिया जेवर खाए नन योनि सदा फिरे कदार्य भक्षण करे तार जन्म आधा पते जाए. उनका कथन है कि कर्मकांत तथा ज्ञानकांत मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोता है और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहता है, अतः सदैव संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोज नरक में रखा जाए, जहां उसे मल मूत्र पीप श्लेष्मा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है. यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है. यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयोद सागर में लोदकार अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ता है. अतः जन्मजात शूद्र से यह आशा की जाती है कि वो ब्राह्मण बने, यही मानव जीवन का अभिप्राय है. प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो ऊपर उठे. श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश. प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गया है. यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वो अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे. किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए. चाहे उस की वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वो स्वतः ब्राह्मण हो जाता है. या तभी संभव है जब कृष्ण भवन अमृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहता है. जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मं परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ. मनुष्य को चाहे कि शूद्र क्षत्रिय वैश्य के वृत्तिपारक कर्म को त्याग कर वैष्णवों के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश है. इसकी व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीते में इस प्रकार की है, माम ही पार्थ व्यभाश्रित्या ये पिशु पपयोनया स्त्री वैष्णव तथा शूद्रस्ते पीयंती परम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो निम्न योनि वाले स्त्री वैश्य और शूद्र है वे भी परम गति पा सकता है। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य घर लौटना अर्थात भगवान के धाम को जाना है, यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वो शूद्र हो या वैश्य, स्त्री हो या क्षत्रिय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे श्लोक के अनुसार यत्न भोगनी होगी। तद एवाति बी बाति यथम अनंति ओम अज्ञानतिमिदंतस्या ज्ञानंजन सलकया चक्षुरन्मिलितं येनम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपा कदामायं ददाति सापदंतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता परकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविजगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीगंता राधाकंता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परीतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं कौलं नास्त्येव 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 गत्यरन्यथा। तो इस अध्याय में नरक लोक के बारे में वर्णन किए गया है। जो वास्तव में हर व्यक्ति जो इस मनुष्य जो जीवात्मा जो देहधारी इस मनुष्य शरीर में है उनको देखना है, जैसे प्रभुपाद ने उल्लेख किया है तत्पर्य में और हास्यास्त्र में उल्लेख किया जाता है कि हमको ऊपर जाना है, तमसीमा ज्योतिर्गमय मृतमा अमृत गमय असत्मा सद्गमय। तो ये तमगुण जो है हमको ये छोड़ना है। तो ये इस भौतिक जगत में तीन गुण है, सत्व गुण है, रजगुण और तमगुण। तो हर जीवात्मा तो देहधारी जब शरीर में है तो तीन गुण में फंसे हुए हैं और ये पूर्व संस्कार के अनुसार अलग अलग शरीर होता है मनुष्य के भी और पशु पक्षी। और तो पशु पक्षी ये तो रजतम गुण में है और इसके बाद देवता लोग हैं ये सत्व गुण में है और जो इस भूमंडल में है इस पृथ्वी पे है ये सत्व राज और तमगुण में इसके मिश्रित शरीर के स्थित है। तो कोई जड़ सत्व गुण में है ये ब्राह्मण बन जाता है, कोई राजमुख गुण में है ये क्षत्र बन जाता है, जो राजा और तमगुण के है दोनों में है तो वैश्य बन जाता है, वो तम जो तमगुण में है ये शूद्र बन जाता है। लेकिन वास्तव में स्वभावत से हर जीवात्मा भगवान के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये सब जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। और वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, या रामचंद्र भगवान के साथ हो, विष्णु के साथ हो, ये वास्तविक और नित्य संबंध है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत में गिर गया है। दो प्रकार के जीवात्मा है, ये शास्त्र में उल्लेख किया है, नित्य सिद्धा, नित्य सिद्ध परिकार भगवान के परिकार है, जो हमेशा भगवान की सेवा में लीन है अनादिकाल से, उनके पतन कोई संभावना ना है। इसके बाद नित्य बाधा, अनादिकाल से भगवान की इच्छा से तो बाधा वस्त्र में है, लेकिन यह भी भगवान के नित्य दास है, लेकिन बदवस्त में उनके शरीर तो सुप्त रूप में है। जब ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, ये गिर जाता है इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, लेकिन वास्तव में ये भौतिक जगत तो तुच्छ है और कभी कभी प्रकट हो जाता है, और ये आध्यात्मिक जगत के तुलना में तुच्छ है। आध्यात्मिक जगत ये असीमित है, लेकिन फिर भी शास्त्र में भी उल्लेख किया है कि ये आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, और ये भौतिक जगत एक पाद विभूति है। सिर्फ तुलना देंगे के लिए कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये भौतिक जगत कभी कभी प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट हो जाता है बद जीव इसमें आ जाता है, गिर जाता है। ये ब्रह्म ज्योति से जो वहां पर स्थित है, तो सबसे पहले इसमें भी उल्लेख किया है कुछ, ये श्रीमद् भागवतम में स्कंद में अलग अलग कैसे प्रकट हो जाते हैं ये भौतिक जगत, और जैसे दूसरे किताब में ये रूप को ये सनातन गोस्वामी पाद उल्लेख किया है बृहद भगवतामृत में, सबसे पहले प्रदान है ये, जब कुछ मतलब ये प्रकट नाय है भौतिक जगत, प्रदान से सबसे पहले प्रकृति भगवान की इच्छा से प्रकृति प्रकट हो जाते है, इसके बाद तत्व, इसके बाद अलग अलग तत्व प्रकट हो जाता है। ये भी ब्रह्मांड धार ब्रह्मांड के आवरण है। तो जो शरीर से दिव्य शरीर महापुरुष के महाविष्णु के शरीर से निकलता है, जब उनके मुखरविंद से तो निकलता है सांस श्वास एक बार, तो पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है असंख्य। जब सांस अंदर लेता है तो सब ब्रह्मांड प्रवेश कर रहा है फिर से भगवान के शरीर में, तो हर ब्रह्मांड के आवरण है। तो ये सबसे पहले जैसे भूमि अहंकवीतिया में बिना प्रकृति रास्ता था, आठ प्रकार के तत्व है ये पंच तत्व, पहले ये भूमि पृथ्वी के, इसके बाद जल अग्नि वायु आकाश, इसके बाद तो मन बुद्धि और अहंकार, तो इसके बाद ये महातत्व, इसके बाद प्रकृति, और सबसे सूक्ष्म है ये प्रदान। और तो इसमें गिर जाता है जीवात्मा और अलग अलग शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो ब्रह्म जी जो द्वितीय सृष्टि करता है, भगवान की प्रेरणा से अलग अलग शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो अलग अलग इस 14 भुवन में, इस भौतिक जगत में स्वर्ग लोग है, ऊपर के लोग है, भूमंडल में, भूमंडल इसके बाद है, मध्य स्थान है, और इसके बाद नीचे है 7 लोग, सुतल पतल, और इसके अलावा नीचे के लोग के अलावा ये 21, कोई कहता है 21 नरक लोक है, कोई कहता है 28 नरक लोक है, लेकिन जो भी है तो भूमंडल ये क्षेत्र भूमि है, मतलब ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कार्य होता है इसके अनुसार, तो स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, यहाँ पर इससे फिर से आ जाता है, या नरक लोक में या नीचे के लोक जाता है। जो सात्विक है ऊपर जा सकता है, जो जिनके राजसिक स्वभाव है यहाँ पर रह सकता है, शरीर छोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर जन्म लेंगे, और जो तमर गुण में है विशेष करके पापी जो है, बहुत सारे पाप कर रहा है, ये नरक लोग जाएंगे या नीचे के लोग उनको जाना पड़ता है, तो दुखमय है। और इसमें पृथ्वी लोक पे सुख और दुख दोनों बराबर तो मिलता है, लेकिन स्वर्ग लोक में ज्यादा सुख मिलता है, बहुत कम दुख अनुभव करना है उनको। तो यहाँ पर कहना चाहता है तो शास्त्र में और प्रभुपाद कि हमको ऊपर की ओर जाना है, प्रयास करना है, और ये वास्तव में जब बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक है, ये देखता है कि वे आगे जा सकते हैं अपने जीवन में, और शरीर छोड़ने के बाद क्या कह सकता है, तो इसके भी यह है कि हमको आगे जाना है और ऊपर की ओर, लेकिन ये भी है कि स्वर्ग लोक पार करके, अलग अलग आवरण पार करके आध्यात्मिक जगत हमको वहां पर जाना है, ये परम गति है, वापिस जाना आध्यात्मिक जगत में। लेकिन वहां पर भी कोई है जो कहता है ये परम तत्व, इसका कोई रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म है, इसमें लीन हो जाना ये परम गति है, लेकिन वास्तविक ये परम गति नहीं है। पहले से वहां तो आया है बद्ध जीव, जो बद्ध अवस्था में जीव है, ब्रह्म ज्योति शरीर से आया है भगवान के, लेकिन भगवान की सेवा में प्रवेश करना है, यह मेरे उद्देश्य है, यह मेरे परम गति है, भगवान लीला प्रवेश में, गुरु लीला कृष्ण लीला में प्रवेश है, या वैकुंठ लोग भी जा सकते हैं रामचंद्र भगवान, और वहां पर लीला में प्रवेश करना है। तो इसके लिए जब शरीर में है, सड़क के शरीर में, हमको भी देखना है कि हम आगे जा सकता है, पहले सीरी से श्रद्धा है, श्रद्धा होना चाहिए, भगवान है, हम भगवान के दास है, शरीर नहीं है अभी तो आत्मा है, और आगे जाना है, श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, तो शुरुआत में तो लौकिक श्रद्धा है, जिस बार वर्ष में और दूसरे भी लोग है पूरे विश्व में, तो मानते भगवान है, लेकिन ज्यादा सेवा नहीं करता है, जनों के पास ज्ञान आई है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए साधु से, गुरु से, वैष्णव से, इसके बाद तो इसलिए साधु संग में रहना है, तब आगे जा सकता है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है साधु के पास जाना, जैसे बहुत लोग तो उनको मालूम है गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जाता है और इसके बाद उनके पैर छूते हैं और कहता है आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, और क्या चाहिए, सुंदर स्त्री, मकान, घर, पैसे, टीवी, आईपैड, लेकिन इसके लिए तो नहीं जाना चाहिए गुरु के पास, उनके पास जाना है जिज्ञासा करने के लिए, जैसे कृष्ण भी कहते हैं तदविनी परिपाथेना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षति दे ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शनः। गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि है उनके पास जाना है, ये मार्गदर्शन देता है, तो उनके पास भी नम्र भाव में जाना है और पूछताछ करना है जिससे हम आगे जा सकता है, और सेवा भाव भी होना चाहिए, गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम तो कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के दास है, तो निरंतर तो सबसे पहले सेवा भाव, सेवा वृत्ति होने चाहिए, इसके बाद सेवा करना चाहिए और वास्तव में निरंतर भगवान की सेवा करना चाहिए, मन तन वच से वाणी से। तो मनुष्य जब शरीर में है कोई जीवात्मा की ये सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वे देखना है कि आगे जा सकता है, अन्यथा तो नीचे जाएंगे अगर प्रयास नहीं कर रहा है। तो इससे बचना है। और प्रभुपद भी कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि कोई कहता है विशेष करके यहाँ पर भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि अगर कोई ब्राह्मण के कुल में है तो शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, भगवान के पास जा सकते, लेकिन दूसरे नहीं, दूसरे फिर से अगर अच्छे तरह से कार्य कर रहा है इस जन्म में तो अगले जन्म में संभावना है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के लिए है, लेने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट प्रभुपाद कहता है और शास्त्र के अनुसार भी है, कृष्ण भी कहते हैं, प्रभुपाद ये श्लोक उन्होंने उल्लेख किया है, माम ही पात विपाशुद्ध ये पीशु पपियोनया स्त्री वैष्णस्तदा शुद्रोस्ते पियंति परम गतिम। परम अवस्था पर पहुंच सकता है हर जीव अगर शूद्र के जन्म के शरीर में भी, मतलब तो जन्म लिया है शूद्र जाति के है जन्म से, अगर चंदल के भी जो वन आश्रम से बाहर भी अगर जन्म लिया है, लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव के पास जाता है और उनके आदेश के उपदेश आदेश के अनुसार जब भजन करता है तो उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसमें चैतन्य चैतन्यमृत में एक सुंदर श्लोक है, वंदनं तत्पुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु निजो पी या प्रसाद छत भक्ति शास्त्र प्रभात कहा, उनकी वर्णन करता है महाप्रभु के जो कलियुग के अवतार है, जो श्री कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहनान्या राधा भाव द्युति सवितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है, श्रीमती रारानी का भाव द्युति लेकर आया है युगधाम स्थापित करने के लिए, ब्रज भक्ति देने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे सारण भजन करना है। वंदे उनके अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है, उनके अद्भुत ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान से बिना है, साईं भगवान है, सबके स्रोत है कृष्णा, ईश्वर भाग ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि राधे गोविंद सर्वकरण कारणम एते चमसा कलपम सम कृष्णस्तु, भगवान स्वयं सबके स्रोत है कृष्णा, दूसरे अवतार है उनके विस्तार रूप है, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है, ये भी स्वयं भगवान है। तो निजो पी या प्रसाद अच्छात जो भी नीचे है उनकी कृपा से उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, पदित पावन है तू तव अवतार, इसके लिए आया है, सबके उद्धार करने के लिए आया है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भी नीचे है शुद्र हो और इससे भी बाहर, जैसे हरिदास ठाकुर ये तो उनका जन्म एक मुसलमान के परिवार में हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से और वास्तव में ये भगवान की परिकार है और विषय तो महात्मा है, और इसलिए जन्म से तो वैष्णव के संग में थे, और इसके बाद महाप्रभु से ये मिलने से पहले ये जप करते थे, और सिख सोलमाला जप नहीं करते थे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जप करते थे प्रतिदिन हरिदास ठाकुर की। और इसलिए महाप्रभु भी उन्होंने भी बोला नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है कहता है कि ये नामाचार्य नाम क्या आचार्य है, हरिदास ठाकुर उपाधि दिया है, ठाकुर मतलब ये महात्मा है जिनको ये उपाधि मिलता है ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ये महापुरुष है, महोपाध्याय तो ये दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये चार वर्ण से बाहर थे, मुस्लिम के परिवार उनका जन्म हुआ। तो ये दिखाने के लिए जो भी अवस्था हो, कोई बात नहीं है, लेकिन शरण भजन करते हुए उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो इसलिए हमको शुद्ध वैष्णव के संग में रहना है। सदुसंग सदुसंग सर्वशास्त्र काय ऐ लव मात्र सदुसंग सर्व सिद्धि होय। थोड़ा सा संग लेते हुए शुद्ध वैष्णव के इसका फल तो है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ संग लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनके उपदेश आदेश के अनुसार सदन भजन करना है, अन्यथा तो कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैर छूना, चरण कमल छूना, ये शुद्ध वैष्णव के ये तो इससे कुछ नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत तो ये पुण्य और कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ फल मिलता है, लेकिन अदर अगर तो उनके आदेश के अनुसार भजन नहीं करता है तो आगे नहीं जा सकते भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में। लेकिन हमको प्रयास करना उत्तम अवस्था पर पहुंचने के लिए, तो इसके लिए अच्छा तरह से सारे भजन करना है शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में। और इसमें तो श्रील रूप गोस्वामी कहता है कि सबसे पहले गुरुपद आश्रय, इसके बाद क्या करना क्या ना करना है बताता है। और इसमें भी उल्लेख किया है नवविध भक्ति, और अंत में पंच महत्वपूर्ण अंग, वहां पर फिर से सदसांगा। और इसके बाद तो धामवास, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर रहते हुए सदसंग होता है, धाम में है। लेकिन इसके बाद प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, विग्रह सेवा, अच्छा तरह से ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए रोज रोज, तब अनुभव कर सकता है कि कृष्णा और कृष्ण नाम अभिन्न है, अन्यथा तो मुश्किल है आगे जाने के लिए। शुरुआत में ठाकुर जी की सेवा करना है, इसके बाद भागवत श्रावण, तो मुकुरवेंद वैष्णव के गुरु से तो मार्गदर्शन लेना है कैसे आगे जाना भक्ति मार्ग में, इसका श्रवण करना है। और विशेष करके कृष्णा और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला का श्रवण करना है, नाम रूप गुण लीला। तो जब श्रवण नायक करते हैं भगवान के सुंदर रूप के बारे में, कस्तूरी तिलकम ललात पातले वक्षस्थाले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिदम करतले वेणुकार कंकनम सर्वांग हरि चंदनम सुलितम कंते च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चोरमानी। सो जैसे अलग अलग श्लोक है पूर्वताचार्यों के, तो इसका श्रवण करते हुए और उच्चारण करते हुए स्मरण करते हुए अच्छा तरह से जप कर सकता है, भजन कर सकता है। तो ललाट पे कस्तूरी तिलक है कृष्ण के, वक्ष स्थान कौस्तुभ, कौस्तुभ मानी चट पे है, और हाथ में क्या है मुरली, इसलिए कृष्ण का नाम है मुरलीदार। यहाँ पर कंगन है, सुंदर माला वैजयंती माला पहनता है। और इसके बाद ये ध्याये नवगण श्यामम दिभुजम मुरलीधारम लसत पीत पातम राम्याम सारादम पुरुषोत्तम, उनका स्मरण करता है पुरुषोत्तम जिनके सुंदर रूप है, श्याम राम के है, मेघ श्याम उसका नाम भी है। बदल ये बदल के जैसे वर्ष ऋतु के बदल के रंग जो होता है श्याम रंग के, वैसे कृष्ण के रंग है, लेकिन इससे भी सुंदर है। सिर्फ उपमा देने के लिए तो ऐसे उल्लेख किया है शास्त्र में। तुमको स्मरण करना है सुंदर रूप कृष्ण के, द्विभुजम के दो हाथ है, चतुर्भुज नारायण से के स्रोत है वास्तव में। मुरलीधारम, मुरलीधारम करते मुरली बजाता है, वेम से बजाता है, इससे ये ब्रिजवासियां तो आकृष्ट हो जाता है। उनके एक गुण है वेणु मधुरिया, इसके बाद रूप मधुरिया और लीला मधुरिया, उनके सुंदर लीलाएं है, अद्भुत लीला है। और प्रेम मधुरिया, प्रेम संबंध ब्रिजवासियों के साथ। लसत पीत पातम, तो पीत वस्त्र पहनता है, धोती चादर। रामयाम सारादा पुरुषोत्तमम, हमेशा श्रीमती रानी के साथ रमन करता है, इसलिए उनका नाम है राधिका रमन, राधा रमन। तो इसलिए ये महामंत्र में भी तो कृष्ण ही है इसमें, और इसमें राम, इसका अर्थ क्या है? वैदग्ध सार सार्वस्वम मूर्ति लीला दिदायवतम राधम राम यम नित्यम राम इति बद्धीयते। ये राम महामंत्र में राम का ये अर्थ है कि ये कृष्ण है, उनके साथ श्रीमती रानी रमन करती है और उनके बहुत सुंदर अद्भुत उनके लीला है, विशेष करके गोपियों के साथ। कृष्ण सबसे सुंदर पुरुष है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है, लेकिन विशेष करके जब गोपियों के साथ है तो उसी समय सबसे सुंदर है, क्योंकि गोपियां सबसे सुंदर तो स्त्री है, और विशेष करके भाव के के इससे आकृष्ट हो जाता है भगवान, उनके प्रेम से इसे वशीभूत हो जाता है कृष्णा। लेकिन फिर भी लीला में ऐसा होता है, लेकिन कृष्णा तो तत्व के अनुसार तो सार ऐश्वर्य पूर्ण है, सबके स्रोत है, लेकिन लीला में तो प्रेम से वशीभूत हो जाता है गोपियों के, नंद बाबा यशोदा उनके मित्र से, सुदाम श्रीदाम मदमंगल इत्यादि, और उनके सेवक गण भी रक्तक पत्रक और सब ब्रिजवासियां कृष्ण के प्रति उनके प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, मधुर्य प्रेम है, पशु पक्षी भी। तो इसका श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के लीलाएं। ये भी श्रीला रूप गोस्वामी पाद उपदेश अमृत ने, ये भक्ति रस अमृत सिंध में उल्लेख किया है, कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मरण निजासम सेव सार गुरुपिना सिर रूपिना छत्र ही तद बाबलिपन करिया वराजलोकन सना राजलोकन सरता सड़क के शरीर में। तो ठाकुर जी की सेवा करना है, नाम कीर्तन करना है, भगवत श्रवण करना है, लेकिन इसके बाद सिद्ध अवस्था में जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है तीन गुण से परे, तो उसी समय निरंतर कृष्णा और कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार के स्मरण करता है। कृष्ण स्मरण जन्म चश्य निज पृष्ठम समीतम तत्क कथा रचस्तस्य कुर्यद्वसं व्रज सदा। तो कृष्ण के जो कृष्ण स्मरण, कृष्ण के स्मरण करना है, लेकिन इसके यह सिर्फ कृष्ण के ना है, लेकिन ब्रिजवासियों के, गोपियों के, नंद बाबी यशोदा के, उनके लीला का स्मरण करना है। ऐसे करते हुए ब्रज में रहना है, शीर्ष स्तरीय से नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाता है, रहता है, लेकिन भजन नहीं करता है, तो वास्तव में ब्रज में नहीं है, ब्रज के ऊपर है। ब्रज के ऊपर एक आवरण है, भौतिक आवरण है, लेकिन हम प्रवेश करना है ब्रज में, तो अच्छी तरह से भजन करते हुए शुद्ध वैष्णव के माध्यम से उनकी कृपा से प्रवेश कर सकता है। जब निरंतर जप करता है, सेवा करता है और साधु के संग में है और लीला श्रवण करता है, भगवान के रूप गुण लीला का श्रवण करता है, इसके बाद तो प्रवेश कर सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। और ये वास्तव में कलयुग में तो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप गुण लीला के श्रवण भी करना है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो गोलोक जाना कलयुग में तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस कलयुग के जीव आत्मा वास्तव में तो शूद्र के समान है। कौलव शूद्र संभव शास्त्र में उल्लेख है, शूद्र के समान है, लेकिन वैष्णव के संग में तो वैष्णव के शुद्ध वैष्णव के संग में वैष्णव के पार पर पहुंच सकता है, जिस यहाँ पर भी उल्लेख किया है। विशेष करके इस श्लोक में तो शूद्र के बारे में बताया गया है, तो सबको जो भी जीवात्मा जिस भी स्थिति में है उनको देखना है कि आगे जा सकता है, ब्राह्मण के वस्त्र पर पहुंचना है शूद्र को भी, इसलिए गुरु के साथ रहना है, वैष्णव के साथ रहना, भगवत श्रवण करना है और सबको ठाकुर जी की सेवा करना है, शूद्र को भी भगवत श्रवण करना है। ऐसे करते हुए तो ब्राह्मण के अवस्था पर पहुंच सकता है, तब वास्तव में वैष्णव के अवस्था पर पहुंच सकता है। तो वैष्णव मतलब ये सब सर्वोत्तम अवस्था है, ब्राह्मण के ऊपर है। कोई है जो ब्राह्मण है जो लेकिन तो ज्यादा ठाकुर जी की सेवा ना करता है, या मायावादी हो, कर्म कंदी हो, ज्ञान कंदी हो, लेकिन जैसे यहां पर उल्लेख किया है प्रभुपाद, कर्म कंद ज्ञान कंद केवल विषय बंद अमृत बलिया ये वकाय। तो इसका जब सिर्फ कर्म करता है शास्त्र के अनुसार भी हो, जब ज्ञान शास्त्र का अध्ययन भी करता है और शास्त्र के अनुसार वैदिक साहित्य के अनुसार, लेकिन भगवान केंद्र में ना है तो मतलब इसका को वास्तविक फल नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तव में सिर्फ स्वर्ग लोक को नहीं जाना है हमको, लेकिन गोलोक वृंदावन हमको जाना है। तो इसके लिए वैष्णव के पाद पर पहुंचना, अवस्था पर पहुंचना है, और ये संभव है जब वैष्णव के संग में रहता है और उनके आदेश अनुसार जब भजन करता है, विशेष करके महामंत्र के जप और कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।